तवैवास्मि न जिवामि त्वया विना इति विज्ञादे तं नय माम शरणान्तिके। कल हमने भागवत महात्म के संबंध में बतलाया था कुछ। नारद ऋषि हरिद्वार में सनक सनंदन अपने गुरु से मिले और उन्होंने उनको बतलाया समस्याएं हैं, सबकी समस्याएं, सब समय की समस्याएं गीता और श्रीमद् भागवत के श्रवण से दूर हो जाती है, इसलिए आप इसको श्रवण कराएं। और तब उन्होंने श्रवण का आरंभ कराया और जैसे ही महात्मा को श्रवण कराया, आश्चर्य की बात हुई, कि वहां भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ में वहां पर आईं और उनके बच्चे भी, दोनों लड़के भी नौजवान हो गए, बड़ी सुखी हो गए और भक्ति देवी भी बड़ी प्रफुल्लित हो गई। तब उन्होंने कहना आरंभ किया कि देखो, प्राचीन काल में तुंग भद्रा नदी के किनारे, दक्षिण भारत में नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था आत्माराम आत्मदेव, बड़े सदाचारी, अच्छे विचार वाले थे। उनकी पत्नी भी बड़े ऊंचे कुल से आई थी किंतु थोड़ी सी कर्कशा थी, कर्कशा समझते हैं, कठोर वाणी बोलने वाली, बात बात में पति से लड़ने झगड़ने वाली थी, किंतु बड़ी सुंदरी थी और ऊंचे घर से आई थी। बात बात में झगड़ पड़ती, बनती नहीं, और वो भोले भाले विप्र, उसकी बात मान करके किसी प्रकार से संसार का जीवन निर्वाह करते, किंतु उनको पुत्र नहीं था। बहुत दिन हो गया, 50 वर्ष की उम्र हो गई, तो उन्हें सोचा जैसे पुत्र नहीं है तो जीवन बेकार का है, तो मेरे बेटे भी नहीं होंगे तो हमारा मरने के बाद में कौन संस्कार करेगा, उसको तो नरक में भी जगह नहीं मिलती है जिनको पुत्र नहीं है। बड़े चिंतित हुए और एक दिन कहीं पर प्राण त्याग करने के लिए चले, एक सरोवर में पहुंचे, बड़ी प्यास लगी थी, पहुंचे, पानी पिया और सोचा कि इसी सरोवर में डूब करके मरेंगे। इतने में वहां पर एक सन्यासी साधु को देखा, साधु ने पूछा, भाई तुम बड़े दुखी हो, बात क्या है? क्या कहूं, मैं इसलिए दुखी हूं कि हमको कोई पुत्र नहीं है, इसलिए आप सन्यासी हैं, साधु हैं, आप यदि कह दें कि तुमको पुत्र हो जाए तो हो जाएगा और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जिसको पुत्र नहीं है उसका लोक परलोक दोनों बिगड़ जाता है, मैं गाय को खरीद करके लाता हूं तो उसके बच्चे नहीं होते हैं, कोई वृक्ष लगाता हूं तो उसमें फल नहीं आते हैं, कोई चीज ले आता हूं तो जल्दी से सड़ गल जाते हैं, ऐसा मैं पापी हूं या क्या है, इसलिए कृपा करके आप मुझे एक पुत्र दीजिए तो मैं सुखी रहूंगा। सन्यासी ने कहा कि देखो, भागवत गीता रामायण पढ़ो, देखो चित्रकेतु महाराज को 1000 से अधिक रानियां थी, उनको पुत्र नहीं था। उनके घर में अंगिरा ऋषि आए, उन्होंने कहा कि हमको एक पुत्र चाहिए। भैया तुमको 7 जन्म में पुत्र नहीं है, तो हमको तो चाहिए, आप जैसे महात्मा मिल गए तो जरूर एक पुत्र दीजिए, मैं सुखी रहूंगा। कहा जब पुत्र के द्वारा कोई सुखी नहीं रहता, नहीं रहेगा तू, मैं जानता हूं, तो नहीं आप किसी प्रकार से पुत्र दे दें। उन्होंने अच्छा तो जाओ, तुम मानता नहीं है मेरी बात, तुमको हर्ष और शोकप्रद एक पुत्र होगा, उन्हें कोई बात नहीं। शोकप्रद होगा कोई बात न, हर्ष तो होगा ही, यदि बुढ़ापे में हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम तो उसको घर बार सब भार दे करके मैं चला जाऊंगा, वन में भजन करने के लिए कोई बात नहीं है, तभी हमारी संतान तो चलेगी। पुत्र हुआ समय पर, बहुत ही सुंदर अलबेला पुत्र, दिन दिन चांद की तरह बढ़ने लग गया। जब 5 वर्ष का, जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़ा बहुत ही चांद जैसा मुखड़ा, बड़ा ही सुंदर। उनकी हजारों जो पत्नियां थी, उन्होंने सोचा जी अब तो ये राजा उसी स्त्री के पास में रहता है जिसका लड़का है, अब तो हमको नौकरानी की तरफ में भी नहीं पूछता, पहले तो साबुन कपड़े तेल इत्यादि दे देता, किसी बहाने से हम बातचीत कर लेती, अब तो ये कुछ पूछता ही नहीं है। ये सब हमारे दुखों का कारण ये लड़का है, इसलिए सबने मिलकर के उसको 20 दे दिया और लड़का मर गया। अब तो राजा रानी बड़े दुखी होकर के चित्रकेतु महाराज बड़े जोर से रोने लगे। नहीं दुख सुख हुआ, मर गया ना, उनको समझाने के लिए जम आए। और फिर वही नारद ऋषि अंगिरा उनके साथ में आए जो उन्होंने पुत्र दिया था। मैंने कहा था ये पुत्र से सुख नहीं का, समझा, तुम भगवान का चिंतन करो, उन्हीं को अपना पुत्र बनाओ, उन्हीं को अपना स्वामी सखा सब बनाओ और तुम सुखी रहो। तो तुम लोग समझते नहीं, आज तक पुत्र से कौन सुखी हुआ, मोह मत करो। इसके बाद में हाय हाय करते हुए वो नारद जी के पास में बोले जी अब मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने उनको मंत्र देकर, बहुत विस्तारित कथा है, हमने 2 मिनट में कह दी, समय आने पर इसको बतलाएंगे। तो उनको सुख नहीं हुआ, फिर तुमको पुत्र से कैसे सुख हो जाएगा। नहीं प्रभु आप हमको पुत्र दे दीजिए। तो ठीक है, तो नहीं मानता है, जाओ ये फल ले जाओ, अपनी स्त्री को खिला देना, उसको पुत्र होगा, सावधान रहना। दे दिया, वो घर में आया, अपनी पत्नी को बोला जिसे आज तो हमारा परम सौभाग्य है, एक महात्मा जी मिल गए, उन्होंने ये फल दिया है, फल खाने से बहुत ही अच्छा सचरित्र विद्वान सुशील पुत्र होगा, उसको दे दिया, तुम खा लेना। उसने सोचा, जब वो फल दे दिया तो उसने ले लिया, सोचा भाई बड़ी मुश्किल की बात है, अभी तक मैं स्वतंत्र हूं, यदि इस फल को खा लिया और सचमुच में बड़ा गर्भ हो गया तो फिर बड़ा मुश्किल, चलना फिरना तो मुश्किल, और डकैत घर में यदि आ जाए तो भागूंगे कैसे, बड़ी समस्या की बात, और लेकर के चलना फिरना, इधर उधर जाना, घर गृहस्थी को संभालना, ये मेरे लिए संभव की बात नहीं है, इसलिए मैं नहीं खाती। उसने अपनी बहन को बुलाया और उससे पूछा जी क्या करना चाहिए। उसने कहा ये तुम ठीक कहती हो, ठीक कहती है, ऐसा करो हमको बच्चा होने वाला है, 8 महीना भी लगेगा, तुम इसे कह देना जी मैंने खा लिया, और खाना मत फेंक देना, किसी गाय को खिला देना, और जब हमको बच्चा होगा तो वो बच्चा तुमको मैं दे दूंगी, तुम कहना जी हमको बच्चा हुआ है, और दूध पिलाने के लिए कहना कि मेरी स्त्री को तो मैंने हमको तो दूध उतरता नहीं, हमारी बहन को बुला दो, वो दूध पिलाएगी, उसको कुछ पैसे दे दिए जाए, बस काम बन जाएगा। बस ऐसा ही किया, उसने गाय को वो फल खिला दिया, उसको भी गर्भ रहा, और इधर उसको तो गर्भ था ही, उसकी बहन को ठीक समय पर 9 महीने के बाद में गैया ने एक बड़ा सुंदर बच्चा, किंतु कान उसका गाय के समान और बाकी सब शरीर इत्यादि सब, और बड़ा ही सुशील और बहुत तीव्र बुद्धि का और बहुत धीर स्थिर लड़का हुआ, और उसको कैसा लड़का हुआ, उसको लड़का हुआ बाप बदमाश, संस्कार तो था नहीं, बहुत ही बदमाश, जन्म लेने से ही। इसके बाद में वो दे गई इसको धुंधली को, उसकी बहन, और इसने कह दिया जैसे हमको बच्चा हो गया। पति ने भी मान लिया, किंतु दूध तो है नहीं, बच्चा तो हुआ नहीं। उसने कहा जैसे हमारी बहन को बुला दो, उसका बच्चा हुआ था वो मर गया है, तो आकर के दूध पिलाया जाएगी, उसको कुछ पैसे दे देना। अच्छी बात है, ठीक है, पति भोले भाले सरल सीधे मान लिए। और उसके बाद में दोनों लड़के बढ़ने लगे, और कुछ दिनों के बाद में महोत्पाती हुआ वो धुंधली का लड़का, बहुत उत्पाद। और ये लड़का बड़ा सुशील, वेद इत्यादि अध्ययन, श्रीमद् भागवत गीता अध्ययन करने लगा, और वैसे ही उसमें गुण आने लगे। और वो धुंधकारी बदमाश, उसका संस्कार इतना खराब कि डकैत चोर होने लग गया। धीरे धीरे 8-9 वर्ष की उम्र में ही चोरी डकैती ये सब करने लगा। दोस्त कुछ बदमाश लड़कों के साथ में मिल करके दूसरों को, लड़कों को पानी में फेंक देता, उन्हें मार डालता, कुछ तंग करता, ऐसा वो, इसलिए उसका नाम धुंधकारी रखा गया। कुछ दिनों के बाद में जब ये कुछ और बड़े हुए तो ये अपने पिता और माता को मारने लग गया, और बोला अरे तुम्हारे पास में जो धन है वो दे दो, नहीं तो अभी तुम्हें मारूंगा। ऐसे जो कुछ उसके पास में थे सब ले लिए, और फिर भी उनको तंग करता, जो कुछ था वो सब कुछ ले लिया, और अंत में ऐसा तंग किया कि उसके पिताजी बोले जब मैं क्या करूं। गोकर्ण ने कहा जी अब चला जाना ही अच्छा है घर से, इसका सुधारना बड़ा कठिन है, मैं भी तीर्थ में जा रहा हूं, और आप कहीं वन में जाकर के भगवान का भजन कीजिए, इसी से सुखी होंगे। पहले आपको बतलाया था नरसी ने आकर के, आपको आपने सुना नहीं, ठीक है, वो तो चले गए, और इधर में भगवान का भजन करने लगे, और उसकी मैया को मार पीट कर तंग कर ऐसा तंग किया कि वो कुएं में डूब करके मर गई। अब वो स्वतंत्र हो गया, भाई भी तीर्थ में चले गए, कोई संभालने वाला नहीं, अब वेश्याओं के साथ में रहने लग गया, बुरे कर्म करने लगा, डकैती करने लग गया, और अंत में ऐसी दशा हुई एक दिन बहुत सा माल चोरी करके ले आया, सोने जवाहरात इत्यादि कहीं से, और जो वेश्याएं उसके पास में थी 8-10, उन लोग अच्छा मौका है, ये तो दूसरों को ही देगा, खर्च कर देगा, इसलिए इसको मार करके आज यहीं पर गाड़ देना है, बस लकड़ी जलाकर और लकड़ी जलती हुई लकड़ी के अंगार से उन्हें पीट करके मारा, और मार करके घर में गड्ढा खोद करके गाड़ दिया, और रुपये पैसे लेकर के चली गई। अब ये मरने पर वहां पिशाच हुआ, अंत में जिसकी मृत्यु होती है जैसे ऐसे ही पिशाच होता है। भरत जी का नाम सुना था होगा आप लोगों ने, मरते समय में उन्होंने एक हिरण की चिंता की तो वो हिरण बन करके आए। जो भगवत चिंतन करेगा, भगवान के भक्तों की चिंतन करेगा, वो वैसा ही जन्म पा करके भगवान को प्राप्त होगा, सुखी होगा। तो इसलिए ये महापिशाच हुआ, भोजन देख रहा है खा नहीं सकता, पानी देख रहा है पी नहीं सकता, सब समय जलता जलता कहता रहता, और गांव में बड़ा उत्पात करने लग गया। कुछ दिनों के बाद में उसके भैया तीर्थ यात्रा से लौटे, वहां आकर के उसी अपने घर में ठहरे, रात में कवाड़े बजने लगी, पत्थर बरसने लग गए, गाली गलौज बक रहा, ये कौन है, वो अपना मंत्र उच्चारण करते ही वो शांत हो गया। मैंने कहा तुम कौन है, मैं तुम्हारा वही भैया धुंधकारी हूँ, मुझे वेश्याओं ने ऐसे मारा, हमारी बड़ी दुर्गति हुई, मैं पिशाच होकर के आऊँ, हमारा जल्दी इसमें से उद्धार करो। उन्होंने कहा भाई हमने तो गया में, पुष्कर में और हरिद्वार में, उधर काशी कांची में, कन्याकुमारी में, बहुत सी तुम्हारे लिए, हमारे पूर्वजों के लिए और तुम्हारे लिए भी मैंने श्राद्ध किया है, मैं जान गया था ये तुम मर गया है और ऐसे मरा, इसलिए हमने श्राद्ध किया, तो तुम्हारा कुछ भी इसे बना नहीं, अच्छा तो ठीक है, मैं इसके लिए चिंता करता हूँ, चिंता मत करो, मैं दो एक दिन के अंदर में उपाय सोच करके तुम्हें बतलाऊंगा। ऐसा सोच करके वो सूर्य का ध्यान किया। सूर्य ने आकाशवाणी के माध्यम से बतलाया, 7 दिनों तक भागवत का करके से सुनाओ और ये ध्यान से सुने, तभी इसका उद्धार होगा और नहीं होगा। अच्छा ठीक है, उन्होंने ढिढोरा पिटवा दिया, घोषणा की दी कि हम यहाँ पर भागवत का कथा हम सुनाएंगे। खुद विद्वान थे ही, संकल्प किया, चारों तरफ से मनुष्य सब आने लगे, ऋषि महात्मा भी वहां पर उपस्थित, हजारों आदमियों की भीड़ हो गई। उन्होंने कथा आरंभ की। जो आरंभ की पहला दिन समाप्त हुआ, वो प्रेत के रूप में उसका आवाहन किया धुंधकारी का, और वो आकर के उस किसी चीज में रहेगा। आत्मा कैसी होती है, हवा से भी बड़ी सूक्ष्म होती है। एक केस को 100 भाग में विभाग करो और फिर उसके एक भाग को फिर 100 से भाग कर दो, उसे भी सूक्ष्म में ये जीवात्मा होती है। और प्रत्येक व्यक्तियों के अंदर में एक एक जीवात्मा है, अभी वैसा भी कुछ कर रहा है, और सबके पास ही में उसके सखा परमात्मा है जो उसको देखते हैं और उसके कर्मों को देख करके उसी अनुसार में उसको फल भी देते हैं। किंतु वो पास में रहने पर भी परमात्मा को देख नहीं पाता। हम लोगों के अंदर में सभी के अंदर में जीवात्मा और परमात्मा दो है, केवल परमात्मा है या जीवात्मा नहीं है, ऐसा नहीं। वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में यह सर्वत्र बतलाया गया है, दौ सखाय सुपर्णाशायी इत्यादि बतलाया गया। हमारे शरीर में एक आत्मा है और एक परमात्मा। परमात्मा हमारे कर्म फलों का नियंता है और साक्षी है, और जीवात्मा कर्म फल करता, कर्म का फल चलता है। फिर क्या बतला रहा था, हाँ, धुंधकारी आकर के और एक बांस रखा था सूखा, 7 गांठों वाला, उसी के छेद में प्रवेश कर गया और बड़े ध्यान से सुनने लगा। पहले दिन ही जब कथा समाप्त हुई, उसका एक गांठ बड़े जोर से फटी, दूसरे दिन दूसरी फटी, तीसरे दिन तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 7 दिन में 7 गांठें फट गई। भागवत की कथा जैसा हम लोग आरंभ कर रहे हैं, नारद उपाख्यान, नारद जी और व्यास जी का मिलन, कैसे व्यास जी ने भागवत को जगत में प्रकाश किया, फिर अश्वत्थामा और पांडवों और कौरवों का युद्ध के संबंध में कुछ, इसके बाद में धीरे 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 ध्रुव जी का चरित्र, अजामिल जी का उपाख्यान, कैसे भगवान के नाम के द्वारा उनका उद्धार हुआ, कैसे कपिल और देवहूति का संवाद हुआ, कपिल जी ने अपनी मैया को भागवत का तत्व बतलाया, इसके बाद में फिर प्रहलाद महाराज जी का चरित्र, इसके बाद में और सब चरित्र, चित्रकेतु महाराज जी का चरित्र, अंत में कृष्ण का जन्म, एक मथुरा में जन्म और दूसरा गोकुल में जन्म, और किस प्रकार से उन्होंने बाल्य लीलाएं की, पुतना, तृणावर, तघासुर, बकासुर इत्यादि राक्षसों का संहार किया, फिर अंत में उन्होंने रासलीला इत्यादि ब्रज में की, फिर कंस का उद्धार किया, इसके बाद में मथुरा आ गए और मथुरा से आकर के फिर वो गुरुकुल में कैसे गए बलदेव जी के साथ में, 60 कलाओं को उन्होंने शिक्षा की, फिर वहाँ से लौट करके आए और फिर द्वारका को चले गए, क्यों द्वारका का चले गए ये सब उसमें है। द्वारका के जाने के बाद में उनकी भी उनकी शादियाँ हुई, रुक्मणी, सत्यभामा, नग्नजित्या और सबसे, और अंत में 16,000 स्त्रियों के साथ में नरकासुर के जगह में वहाँ पर उनकी शादियाँ हुई, इसके बाद में उनके पुत्र कैसे हुए, अंत में महाभारत युद्ध हुआ, महाभारत युद्ध में ये किस प्रकार से अर्जुन के सारथी बने और किस प्रकार से घोर महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध में इन्होंने रथ संचालन किया, उनके मन के सारथी बने और किस प्रकार से धर्म की प्रतिष्ठा की, और अंत में द्वारका में अपनी लीलाओं का संगोपन कर लिया। ये सब चरित्र आरंभ से उन्होंने सुनाया, हम क्रमशः इसका हम बतलाएंगे। अभी हम कुछ शंकाओं का समाधान भी करने जा रहे हैं। पहली बात ये शंका होती है, महाभारत के युद्ध में भारतवर्ष आधुनिक इतिहासकारों का और आधुनिक दिमाग वाले लोगों का कहना है कि भारतवर्ष उसे रसातल में चला गया। उस युद्ध में भीष्म, कर्ण, द्रोण इत्यादि बड़े बड़े लोग, अभिमन्यु इत्यादि दोनों तरफों के कितने 18 छौणी माने कितने लाख, 40 लाख के करीब दोनों ओर की सेनाओं में पुरुष लोग सब मरे गए, केवल कृष्ण और 5 पांडव और उधर में 3 आदमी केवल बचे थे। तो ये 8 आदमी बचे, बाकी सब 40 लाख लोग जितने पुरुष थे मारे गए। जब मारे गए तो स्त्रियां विधवा हो गईं, बच्चे अनाथ हो गए। इन वीरों के मरने से हमारे यहाँ का धनुर्वेद और जो विद्याएं थी वो भी धीरे धीरे लुप्त हो गईं। तो भारतवर्ष की उन्नति, धर्म की स्थापना कहाँ हुई? किंतु गीता में तो लिखा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्मान। युग युग में आता हूँ, धर्म की प्रतिष्ठा करता हूँ, इस समय भी कृष्ण के रूप में आया हूँ, असुरों का दमन कर और साधु संतों की रक्षा कर मैं धर्म की संस्थापना करूंगा। कृष्ण की प्रतिज्ञा तो असफल हो नहीं सकती, जरूर हुई पूरी धर्म की स्थापना की, किंतु आज करके ऐतिहासिकों का, दूसरे लोगों का ये विचार है या हम लोगों का सबका, भारत युद्ध में भारत का विनाश हुआ, इतने लाखों लोगों का मरना, स्त्रियों का विधवा होना, ये सब क्या है? विद्याएं लुप्त हो गईं और तब से बाद में हम लोग मुसलमानों के गुलाम हुए, इसके बाद में भारतवासी लोग ये औरंगजेब इत्यादि के इसमें आए, इसके बाद में पुनः अंग्रेजों के अधिकार में आए और अब तक हम लोग एक तरह से दासी हैं, अब स्वतंत्र हुए हैं इतने दिनों के बाद। इसका समाधान क्या है? कृष्ण ने धर्म की प्रतिष्ठा कैसे की? इसलिए आप लोग इसमें शंका नहीं करेंगे कृष्ण ने धर्म की प्रतिष्ठा की कैसे। देखो इस चीज को खूब गंभीरता से समझेंगे और इसके बाद में हम ये भी बतलाएंगे कि स्त्रियों को गायत्री क्यों नहीं दी जाती ना, स्त्रियों को गायत्री का मंत्र क्यों नहीं जाता, ये सरासर अन्याय है ना। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, ये शास्त्रों में ऐसा क्यों कहा गया? ये स्त्रियां ढोल गंवार शूद्र और पशुनारी को ये मारने से सीधे होते हैं, ये क्यों कहा गया? अनुसुईया जी ने सीता जी को क्यों कहा पति लंगड़ा लूला कोढ़ी का भी हो, दुर्वचन बोलने वाला भी हो, तो भी पति की सेवा करनी चाहिए स्त्रियों के लिए, ये उनका धर्म है ने? ये भी तो अन्याय ही है। यदि पति बदमाश टाइप का है तो भी स्त्रियां उनको भी पति की सेवा करेंगी, ये तो उन्होंने गड़बड़ कहा। फिर राम ने सीता जी का त्याग क्यों किया, क्या उन्होंने अन्याय किया था, ये भी तीसरी के साथ में अन्याय है। शंकर जी ने सती का क्यों त्याग किया, ये भी तो अन्याय है ना, क्यों त्याग किया? इसलिए हम देखते हैं कि ऊपर से नीचे तक क्या है, सब सरासर पुरुष लोगों का ये अन्याय है स्त्रियों पर, और शास्त्रकारों ने, ये पुरुष लोगों ने शास्त्र बनाए और उनको इन सब से वंचित करके और स्त्रियों को सदा जकड़ करके रखा जो वो ऊपर न उठ सके, ये तो सरासर अन्याय है, ये शास्त्र में ऐसा कहा गया क्यों? और भी कुछ प्रश्न है, अभी याद नहीं आ रहा, मुझे याद था और कोई बहुत गूढ़ प्रश्न ऐसे ही याद है। खैर मैं इस सब का समाधान करूंगा, इसलिए भागवत आरंभ करने से पहले इनका भी समाधान होना, आप लोग स्वयं ही विचार करके देखें, नहीं नहीं तो तुलसीदास ने अन्याय नहीं किया। ये शास्त्र पुरुषों के भी नहीं बनाए हुए हैं, स्त्रियों का समाज में सब समय आदर रहा है। जिस समाज में स्त्रियों का आदर नहीं है, माता के रूप में, बहन के रूप में, कन्या के रूप में, वो समाज एकदम मरा हुआ समाज है। तुलसीदास जी ने ऐसा कभी नहीं किया, शास्त्रों में ऐसा नहीं कहीं कहा गया, अनुसुईया जी ने ऐसा भी कभी नहीं कहा, राम ने भी ऐसा अन्याय नहीं किया। ये सब हम समय के अनुसार में इसे बतलाएंगे। अभी थोड़ा सा आप लोग हमारे माधव महाराज जी के मुख से अभी थोड़ा सा श्रीमद् भागवत में जो हम आरंभ करने जाते हैं नारद जी का चरित्र सुनाएंगे। शास्त्रों में ऐसा ही कहा गया है, बिन गुरु भवनिधि तरे न कोई, यो बिरंत शंकर सम होई। यदि भगवान शंकर के समान और ब्रह्मा के समान ज्ञानी भी हो तो अभी बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा। अपने मन से हम जो विचार करते हैं उसे भव सागर को पार नहीं कर सकते, बुढ़ापा को दूर नहीं कर सकते, जन्म मरण का क्लेश ये दूर नहीं होगा, कैसे होगा? ये भगवत तत्व ज्ञान गुरु से ही होता है। नारद जी जैसे व्यक्ति किस प्रकार से अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया और फिर व्यास जी जैसे नारायण के अवतार व्यास जी, उन्होंने किस प्रकार से नारद जी से मंत्र इत्यादि ग्रहण करके उसका पालन करके विश्व के कल्याण के लिए ये श्रीमद् भागवत की रचना की, इसके संबंध में संक्षिप्त में श्रीपाद माधव महाराज जी आपको बतलाएंगे। बोलिए। बहुत अच्छा। जिस समय गोकर्ण जी ने कथा समाप्त की उस समय आकाश में एक विमान आया और धुंधकारी को लेकर वो चला गया। जब जा रहा था तो गोकर्ण जी ने पूछा, अरे पार्षदों, भगवान के पार्षदों, यहाँ पर तो हजारों आदमियों ने, 88,000 मनुष्यों ने, ऋषियों ने, गृहस्थ भक्तों ने, सबने भगवान भागवत की कथा सुनी और मैंने सुनाया तो हमारे लिए कोई विमान नहीं आया, और इतने लोगों ने सुना सबके लेने आए, एक ही क्यों बीमार आया, ये पक्षपात क्यों? उन्होंने कहा, धुंधकारी ने जिस रूप से सुना, निराहार रहकर कुछ भी नहीं खाया और बड़े मन से बड़े ध्यान से सुना और सुन करके कथाओं का मनन करता था, मनन मैंने क्या, चिंतन करके उसको मन ही मन में ग्रहण कर लेता था, इसलिए उस श्रद्धा के कारण, मनन के कारण वो भगवान को प्राप्त हो गया। और लोगों ने इस प्रकार से नियम से नहीं सुना, सुनने के लिए सुना, सुना विचार नहीं किया, श्रद्धा के साथ में पालन करने के लिए नहीं सुना, कल्याण के लिए नहीं सुना। और आपने जो भागवत की कथा की वो धुंधुकारी के लिए किया, किंतु आपने भी मनन के साथ में नहीं किया, इसलिए ऐसा। इसलिए श्रोता के विचारों के अनुसार में फल होता है। भागवत सबके लिए कल्याणकारी है, यह बात तो ठीक है, किंतु उस रूप से धुंधकारी की भांति, परीक्षित महाराज जी की भांति, नारद की भांति, भक्ति की भांति यदि कोई मन से सुने पालन करने के लिए तो भाई उसका प्रेम फल होगा, और नहीं तो धन धान्य ये साधारण चीजें होंगी, मोह में और बांध देगी और संसार में जीवन मरण के चक्कर में हम पड़े रहेंगे, इसलिए सुनना चाहिए। वैसा उन्होंने फिर भागवत की कथा सुनाई और इस बार जरा मन से सुनाया और उन्होंने मन के साथ में संपूर्ण रूप से लग्न के साथ में आदर के साथ में वस्तु को पाने के लिए श्रवण किया और इस बार लाखों विमान आए और जितने थे वो सब वैकुंठ की गति को प्राप्त। कथा भी ऐसे सुननी चाहिए पालन करने के लिए श्रद्धा के अनुसार में, नहीं तो श्रोताओं के मन के भेद से उसके फल में भी अनिवार्य है। एक ही क्लास में 100 लड़के पढ़ते हैं, कोई फर्स्ट होता है, कोई सेकंड होता है, कोई थर्ड होता है, कोई फेल भी होते हैं। क्यों? कि मास्टर ने ऐसा पक्षपात क्यों किया, उनकी कॉपियों के जांचने में गड़बड़ी हुई नहीं, अपनी निष्ठा के ऊपर में निर्भर है। जो जितने मन से पढ़ेगा वो पास होगा या उच्च कोटि में जाएगा। उसी प्रकार से भागवत में भी, इसलिए खूब मन से सुनेंगे। पहली बात, हम आ रहे हैं थोड़ा सा शंकाओं का निवारण करेंगे, ये भी जरूरी है, ये भी भागवत का ही अंग है। नहीं तो बहुत से पाठक लोग आते हैं, इन शंकाओं का निवारण नहीं कर पाते। इसके अतिरिक्त भी आपको कोई शंका होगी तो हम इस भागवत के माध्यम से ही हम उसको सुलझाने की चेष्टा करें। मैं ये नहीं कहता कि मैं सर्वज्ञ हूँ और सब कुछ जानता हूँ, तभी मैं जहाँ तक समझता हूँ गुरु वैष्णव की सेवा की है, उनकी मुख से सुना है, शास्त्रों का अध्ययन किया है, तो मैं समझता हूँ कि जरूर आप लोग संतुष्ट होंगे। पहली बात, शास्त्रों ने स्त्रियों के लिए इस प्रकार से एक पक्ष लेकर के पुरुषों का, गायत्री मंत्र को स्त्रियों के लिए क्यों नहीं कहा? सब समय ही प्रारंभिक रूप से ये उसके लिए कुछ मना किया गया है गुरु परंपरा की दृष्टि से। क्यों भाई? कुछ शरीर की बनावट होती है, स्त्रियों को रजस्वला होता है धर्म, पुरुषों को नहीं होता है। उस समय जिस समय रजस्वला होता है, मासिक धर्म उनको होता है, उनके लिए रसोई बनाना, घर का काम करना, किसी को छूना, ये सब मना है। क्यों? तो स्त्रियां अशुद्ध हैं सब समय, तो स्त्रियां कुछ सब समय के लिए अशुद्ध हो गई? नहीं, ये शास्त्रकारों का विचार है, उनके कल्याण के लिए, पुरुषों का स्त्रियां दोनों को कल्याण के लिए। इसलिए रजस्वला में स्त्रियों को जरा लोगों को छूना, रसोई इत्यादि का कार्य, भगवान की को भोग इत्यादि देना, ये सब नहीं करना चाहिए। तभी जिन स्त्रियों को छोटे छोटे बच्चे हैं तो क्या करेंगी? दूध नहीं पिलाएंगी? वो तो बाध्य होकर के जो कुछ करना है तो करना पड़ेगा, किंतु वो मासिक धर्म स्त्रियों को होता है, इसलिए अपवित्रता के कारण ये ब्रह्म गायत्री नहीं करें। किंतु ब्रह्म गायत्री से ऊंचे जो मंत्र हैं, गोपाल मंत्र है, काम गायत्री है, और दूसरे मंत्र हैं दिए जाते हैं। ये ब्रह्म गायत्री से भी बहुत ऊंचा गोपाल जी का मंत्र है और सब मंत्र हैं, तभी स्त्रियों को ये इसलिए नहीं जाते। दूसरी बात, स्त्रियों में प्रेम धर्म होता है अधिक, बड़ी भावुक होती हैं, इसलिए भजन के लिए, आत्मकल्याण के लिए स्त्रियों जैसा भाव सेवा का भाव होना चाहिए। इसलिए दंडकारण्य के 60,000 ऋषि लोग गोपियों के भाव से भगवान का भजन करने के लिए उपासना कर रही थी। किस लिए? एक छोटा सा बच्चा है, बेटा, मैया से कहे, मैया जरा पानी देना, तो अपनी बहन से कहेगा, छोटी हो या बहन, जरा प्यास लगी है, जरा पानी लगी, तो सबसे वो इसी तरह से बोलेगा, मैया से भी कहेगा, दूसरों से भी कहेगा ने? और बेटी होगी तो क्या करेगी? प्रेम का धर्म, सेवा की भावना उसमें प्रारंभ से होती है। भगवत भजन के लिए ये बहुत ही अनुकूल है। इसलिए बड़े बड़े ऋषि लोग, नारद भी गोपी बने, शंकर जी भी गोपीश्वर महादेव बने और गोपी रूप से कृष्ण की सेवा की। नहीं तो उनको कंट्रोल करना सहज नहीं है, उनको प्राप्त होना सहज नहीं है। पुरुष का अभिमान जो मैं भोगता हूं, ये सब समय साधारण साधकों के लिए भी पत्याज्य है, उनको छोड़ देना चाहिए। पुरुष में अभिमान होता है, ये अभिमान दूर करना ही भजन का प्राथमिक कार्य है। इसलिए पक्षपात के लिए ऐसा नहीं किया गया कि स्त्रियां सेवा करेंगी, उनका धर्म ही है। हम लोग भी स्वरूप से स्त्री हैं। क्यों स्त्री हैं? भगवान की शक्ति से हम लोग निकले हैं, जोग माया के प्रभाव से वो भी स्त्री हैं, इसलिए हम लोग भी स्वरूपतः स्त्री जाति के हैं। शक्ति से निकलने के कारण पुरुष नहीं है, केवल मात्र एक पुरुष कौन है? कृष्ण है या राम या उनकी जो शक्तिमान है, वो भी बिना शक्ति के काम नहीं कर सकते। गोवर्धन को किसने धारण किया? कृष्ण ने गलत बात, उनकी शक्ति ने धारण किया, ने? उनके बाएं तरफ में, कृष्ण के बाएं तरफ में उनकी शक्ति है, उस शक्ति ने गोवर्धन को धारण किया, इसलिए ये सबसे बायां। यदि कृष्ण में शक्ति नहीं हो, दृष्टि शक्ति नहीं हो, कोई शक्ति नहीं हो, बुद्धि न, बुद्धि स्त्रीलिंग है ना, ये भी शक्ति का कार्य है, विचार शक्ति ये भी शक्ति है, कृष्ण में केवल इच्छा शक्ति है और बाकी सब शक्ति करती है, इसलिए शक्ति के साथ में ये सब पक्षपात नहीं है। मूर्ख लोग जो नहीं समझते हैं वो ऐसा कहते हैं। हमारे शास्त्रों में स्त्रियों को बड़ा आदर दिया गया है, आप लोग जानते हैं, रामचंद्र जी जो तुलसी जी ने लिखा मानस चरित्र, उसमें लिखा ढोल गमार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इसका कुछ तात्पर्य है, मूर्ख लोग नहीं समझ पाते न उत्तर दे सकते हैं। रामचंद्र जी ने, तुलसीदास जी ने भी कहा, मंदोदरी द्रौपदी कुंती अहिल्या मंदोदरी तारा, ये पांच कन्याएं हैं, कुंती को पांच पति, पांच नहीं छह पति, उसका पति पांडु जी और छह पति और पांच पति और, जानते हैं आप लोग, द्रौपदी को भी पांच पति और तारा जी को दो, एक बाली और दूसरी सुगुरु के साथ में पीछे से निकाह हुआ, और मंदोदरी रावण के साथ में और फिर अंत में विभीषण के साथ में रही। तो ये कहां, ये पतिव्रता कहां रही? पतिव्रता कहते हैं किसको, इसको समझना चाहिए, इसको समझो। द्रौपदी जी सब समय कृष्ण को सखा मानती थी, उनके पति लोग कृष्ण की सेवा करते थे इसलिए उनके प्रति आदर था, उनके पति एक ही थे, कौन, कृष्ण ही हैं, इस चीज को समझो। जीवात्मा के पति हैं भगवान, कैसे, जो पति कहे जाते हैं उसका अर्थ होता है पालन करना, तो त्राण करना, जो हमारा पालन कर सके, पोषण कर सके और त्राण कर सके। अच्छा, जब तक शादी नहीं हुई थी आपके पति आपका भरण पोषण करते थे, और यदि मर जाएंगे तो पति कहां हुए, असल में पति कौन है, कृष्ण ही पति हैं, भगवान ही पति हैं, इस चीज को समझिए। लौकिक व्यवहार रूप में कुछ दिनों के लिए ये मान लिया गया ये पति हैं, और पति यदि हैं तो 10 बार उसने डाइवोर्स करके 10 बार पति बदला, अब कहां पतित्व रहा, उस स्त्री का ही पतित्व कहां है, पुरुषों का पतित्व कहां है, इसलिए ये सब विचार यानी वहां पर आत्म विचार के लिए ये सब चीजें हैं। एकमात्र कृष्ण ही पति हैं, पुरुषों के लिए ये व्यवहारिक है, उनके प्रति भी आदर होना चाहिए, इसलिए कहा गया है मंदोदरी द्रौपदी। मंदोदरी बहुत ही भक्त थी, रावण को बहुत समझाया था, आप लोगों को पता होगा, बहुत समझाया। कुंती जी को देखो कैसे परम भक्त हैं, अहिल्या जी को देखो भगवान के परम भक्त हैं, यद्यपि गौतम ऋषि ने उनको अभिशाप दे दिया, पत्थर बन गई, किंतु परम भक्त है, अपने पैरों की धूली से उनको स्पर्श किया, बड़ी सुंदरी नारी और बड़ी सद्गुणों से युक्त हुई, भगवान की परम भक्त। ये सब पंच कन्या कालातिनी का स्मरण करने से पतिव्रती स्त्रियां भी हैं वो उतर जाती हैं। तो स्त्रियों के प्रति पक्षपात कहां हुआ शास्त्रों में, जो वहां कहा गया ढोल गमार शूद्र पशुनारी, इसको भी अच्छी तरह से समझिए। तुलसीदास जी बहुत ही विद्वान परम भक्त, सबका कल्याण करने वाले थे। देखिए ढोल, ढोल ताड़न के अधिकारी, ढोल को पीटा जाता है उसे मधुर शब्द आएगा कि बहुत सुंदर ढंग से बजाने से उसमें मधुर कोमल शब्द निकलता है, यहां पर ताड़न नहीं कहा गया ना? ताड़न का शब्द बुरा अर्थ ले लेते हैं, एक आदमी ऐसे ढोल बजा रहा है लकड़ी से यहां से तो उसमें अच्छे शब्द निकलेंगे स्वर, और मात्राओं के साथ में सीख करके बड़े धीरे से ताल स्वर से युक्त निकालेगा, तो तरह तरह के उसमें मधुर बोलियां निकलती हैं। इसलिए पीटने का अर्थ मारना ही नहीं है, ये मूर्खता बस ऐसा लोग करते हैं। तब हाँ ये कहा, ढोल को बजाना, गंवार, गंवार कौन, गंवारिन नहीं लिखा, गंवार लिखा। तो ये गंवार शब्द किसके लिए हुआ, पुरुषों के लिए। जो पुरुष गंवार हैं वो सब पुरुष नहीं, और जो नारी गंवार है उसके लिए लिखा। यदि होता तो रामचंद्र जी और भरत जी कैकई को क्यों नहीं मारा, पीटा, उनको कैसे सम्मान दिया, देखो तो कैकई को क्या गंवार कहेंगे, नहीं तो रामचंद्र जी ने कितना उनको आदर दिया, यह समझो। ये रामचंद्र जी की कथा में जो तुलसीदास जी ने लिखी है, इनकी विशेषता समझो, ये पक्षपात नहीं है। पक्षपात होता तो फिर उन लोगों को ऐसा क्यों कहा, द्रौपदी अहल्या कुंती तारा मंदोदरी इत्यादि को। और यदि ऐसे ही पक्षपात की बात होती तो कैकेयी ने राम को वनवास दिलाया था तो पहले तो उसको वो दंड देते, या माता कौशल्या से भी अधिक उनको सम्मान दिया है। इसलिए ऐसा मत समझो, गंवार जो नारी है, जैसे उनके पास में वन में रावण की बहन शूर्पणखा, कैसी, उसका पति है और पति को छोड़ करके दूसरे पति पर मुग्ध हो जाना, ये गंवारता है ना, अच्छी बात है। तो ऐसे ही पशु तुल्य जो नारियां हैं, स्त्री गंवार नारियां हैं, ऐसे लोगों की ये तान के अधिकारी हैं, इसलिए उनका नाक कान काट लिया। और किसी का काटा, इस विचार को क्यों नहीं समझते साधारण लोग, पक्षपात कहां रहा। शूद्र, शूद्र माने क्या, शूद्र शब्द को समझिए, जो शोक करते हैं इस शरीर के लिए वो शूद्र हैं। सभी शूद्र नहीं है, शूद्र कौन है, जो शोक करते हैं, क्या ये शरीर के लिए, शरीर हम नहीं है, इसके लिए मारामारी करते हैं, आसक्त रहते हैं, साथ साथ मोह में रहते हैं, ये सब शूद्र हैं, तत्व ज्ञान नहीं जानते। दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, ये सब शूद्र हैं, जो कि शरीर के लिए सुख के लिए दिन भर परिश्रम करते हैं, इसलिए ये शूद्रों में गणना है। रामचंद्र जी के समय में देखिए, हनुमान जी को क्या कहा जाएगा, कौन जाति के हैं, सुग्रीव, बानर, भालू, ये कौन से जाति हैं, शूद्र हैं या शूद्र से भी नीचे गए हैं, इनको कितना सम्मान दिया गया। नारद जी कौन से जाति के हैं, ये तो शूद्रानी से जन्म हुए। व्यास जी किसे जन्म लिया, उनकी मैया क्या थी, बतलाओ तो। अरे सुखदेव गोस्वामी का जन्म कैसे हुआ, इनका व्यास जी का जन्म हुआ मथुरा में, पराशर ऋषि जा रहे थे कहीं और अश्वपरा की कन्या मत्स्योदरी उसको देखा और साथ ही साथ उनको बेटा उत्पन्न हो गया। तो ये कौन से जाति के हैं, ये सबका विचार नहीं किया गया है। जन्म से सभी शूद्र हैं, जन्मा जायते शूद्र, सभी शूद्र जन्म से होते हैं, चाहे ब्राह्मण कुल में आए, क्षत्रिय कुल में आए, जिस कुल में आए, मुसलमान कुल में आए, कोई भी, सभी जाति से उस समय में शूद्र हैं, जन्मना जायते शूद्र। संस्कारात् विचोच्यते, और संस्कार गायत्री इत्यादि मंत्र लेकर के जब वो पुष्ट कुछ ज्ञान ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, तो ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति होता है। उसका दूसरा संस्कार होने से गायत्री इत्यादि मंत्रों के द्वारा से, तब वो बीज होता है। विप्र किसको कहते हैं, वेद पाठी भवित विप्र, वेद को पढ़ने वाला। तो यहाँ पर ढोल गंवार शूद्र पशु नारी इत्यादि में जो गंवार शूद्र लोगों के लिए जो शोक करते हैं, जो मांस मदिरा इत्यादि खाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, ये इन लोगों को शूद्र बतलाया गया। किंतु किसी कुल में भी उत्पन्न व्यक्ति जिसको तत्व ज्ञान है, ब्रह्म को जानने वाला है, आत्मा को जानने वाला है, गीता इत्यादि को रहस्य को जान करके चलने वाला है, वो शूद्र नहीं। भगवान का नाम करने वाला, आप वाल्मीकि को जानते हैं ना, उलटा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म के समान। इसलिए हमारे शास्त्रों में ये सबका पक्षपात नहीं है, लोग नहीं समझने के कारण ऐसी गलती करते हैं। यदि सभी पशु मारने योग्य हैं तो गायों को और बछड़ों को मारने के लिए कहीं हमारे शास्त्र में लिखा लिखा है कहीं? तो सब पशु कहां इसमें आए? गंवार पशु, पशु भी कैसा गंवार, जैसे सिंह भालू इत्यादि आ रहे हैं मारने के लिए, झपटने के लिए, हमारे शास्त्र में उनके प्रति भी दया दिखलाने की बात आई है। किंतु इन सभी दूर रहना पड़ेगा।